आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। पूरे ज्ञानवापी परिसर का सर्वे कराने की अपील को वाराणसी की जिला अदालत ने आज किया खारिज। फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे वादी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज महाराजगंज में 940 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। 9 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि आज हुई समाप्त। 30 अक्टूबर तक वापस लिए जा सकेंगे नाम। मेरठ और सहारनपुर में अलग अलग मालगाड़ियों के कई डिब्बे पटरी से उतरे। हादसे के कारण कई ट्रेनों का रूट बदला। घटना की जांच शुरू। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वार्षिक बैठक आज मथुरा के परखम में हुई शुरू। सर संघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत और सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबुले बैठक में शामिल। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। वाराणसी की जिला अदालत ने आज पूरे ज्ञानवापी परिसर का एएसआई से अतिरिक्त सर्वे कराने की अपील को खारिज कर दिया है। सिपिल सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक युगल शंभू की अदालत ने आज ये फैसला सुनाया। वाद मित्र विजय शंकर अस्तोगी ने 7 फरवरी 2024 को जिला अदालत में इस संदर्भ में प्रार्थना पत्र दिया था। सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित कर लिया था। फैसले पर मामले के अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने कहा कि फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में जाएंगे।
ज्ञानवापी प्रकरण में एएसआई सर्वे की मांग की गई थी, जो कि सिविल जज सीनियर डिवीजन के द्वारा खारिज कर दी गई है, और इस विषय पर हमारा विकल्प यह है कि हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे, क्योंकि हमारी मांग है कि एएसआई सर्वे संपूर्ण रूप से माननीय न्यायालय के पटल पे आए।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज महाराजगंज में 940 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसके साथ ही उन्होंने कई विभागों की योजनाओं के लाभार्थियों को प्रतीकात्मक चेक चावी प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में श्री योगी ने स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत छात्रों को टैबलेट और विभिन्न विभागों में नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी बांटे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में बेहतरीन कनेक्टिविटी और शानदार कानून व्यवस्था से बड़े पैमाने पर निवेश आ रहा है। श्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित भारत का लक्ष्य रखा है। इसके लिए सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है।
आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने के लिए हम सबके स्तर पर क्या प्रयास होना चाहिए, यह आज के अवसर पर आत्मावलोकन की आवश्यकता है। याद करिए, सरकार अपना कार्य कर रही है, केंद्र सरकार राज्य सरकार मिलकर के अपने अपने कार्यों को आगे बढ़ा रही है, लेकिन इसमें केवल सरकार की ही जिम्मेदारी है, हमारे स्थानीय निकाय की समितियों का, ग्राम पंचायतों की और आम नागरिकों की क्या भूमिका इसमें हो सकती है, यह आज हम सब के लिए एक विचारणीय प्रश्न होना चाहिए।
कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में आए बदलाव के कारण पूरे देश में उत्तर प्रदेश की सशक्त पहचान बनी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने त्योहारों के मद्देनजर 28 अक्टूबर से 15 नवंबर तक प्रदेश भर में 24 घंटे बिजली आपूर्ति करने के निर्देश दिए हैं। कल लखनऊ में एक उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि धनतेरस, दीपावली, भैया दूज और छठ पूजा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक 24 घंटे अनवरत बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। बैठक में मुख्यमंत्री ने त्योहारों के दौरान शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन को अलर्ट रहने को कहा। उन्होंने सोशल मीडिया पर लगातार निगरानी रखने के लिए हर जिले में टीमें तैनात करने के निर्देश भी दिए। उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज समाप्त हो गई। नामांकन पत्रों की जांच 28 अक्टूबर को होगी। वहीं नाम वापसी की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर है। इन सीटों पर मतदान 13 नवंबर को होगा। आज आखिरी दिन अलग अलग सीटों के लिए विभिन्न दलों के प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। प्रयागराज में फूलपुर सीट से भाजपा प्रत्याशी दीपक पटेल ने पर्चा भरा। इस मौके पर भाजपा नेता और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। अम्बेडकर नगर की कटहरी सीट से भाजपा प्रत्याशी धर्मराज निषाद ने पर्चा दाखिल किया। मैनपुरी जिले के करहल सीट पर भाजपा प्रत्याशी अनुजेश यादव ने नामांकन किया। मिर्जापुर जिले की मझवा सीट से भाजपा प्रत्याशी सुष्मिता मौर्य, सपा से ज्योति बिंद समेत कुल 8 लोगों ने नामांकन दाखिल किया। मुजफ्फरनगर जिले के मीरापुर सीट से राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी मिथिलेश पाल ने पर्चा भरा। इस मौके पर प्रदेश सरकार में मंत्री अनिल कुमार समेत कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए अब जिलाधिकारी और मंडलायुक्त के कार्यक्षेत्र में निवेश की प्रगति और उनके प्रयासों को मॉनिटर किया जाएगा। प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने आज लखनऊ में एक प्रेस वार्ता में कहा कि डीएम और कमिश्नर की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में उनके कार्यक्षेत्र में हुए निवेश और लोन संबंधी प्रगति का उल्लेख करना अनिवार्य होगा। इसके आधार पर अधिकारियों को ग्रेडिंग दी जाएगी, जिससे उनकी परफॉर्मेंस का निष्पक्ष मूल्यांकन हो सकेगा। इस प्रक्रिया को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य होगा।
पिछले लगभग 7.5 साल में सरकार ने 7.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी है, लेकिन पूरे देश में जो वर्किंग एज पॉपुलेशन होती है उसकी मात्र 3% लोग सरकारी नौकरी में है। जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट सरकार ने आयोजित किया था उसमें लगभग 40 लाख करोड़ के निवेश आए हैं और उसमें 1.5 करोड़ लोगों की नौकरी संभावित है और निहित है। इन निवेशों को पूरी रफ्तार के साथ ग्राउंड पे उतारा जाए, इसके लिए डीएम्स और कमिश्नर्स की भूमिका को बढ़ाई जाए, इसी क्रम में राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है।
आज सुबह मेरठ सिटी स्टेशन पर एक मालगाड़ी के कई डिब्बे पटरी से उतर गए। इसकी सूचना मिलते ही रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचे। घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है। वहीं सहारनपुर में पंजाब से बामनहेड़ी जा रही एक अन्य मालगाड़ी के दो डिब्बे भी आज पटरी से उतर गए। यह हादसा सहारनपुर रेलवे स्टेशन के पास हुआ। घटना की सूचना मिलते ही अम्बाला से डीआरएम समेत आला अधिकारी सहारनपुर पहुंचे। घटना के कारण कई ट्रेनों का रूट बदलकर रवाना किया गया। डीआरएम अम्बाला डिवीजन मनदीप सिंह भाटिया ने बताया कि घटना के कारणों की जांच की जा रही है।
गुरु हर साहे फिरोजपुर डिवीजन से लोड हुआ था और दिल्ली के सीडब्ल्यूसी में जा रहा था। इसका 29वां और 30वां वैगन इंजन से 8-8 व्हील से डिरेल हुआ है। ये डिरेलमेंट करीब रिपोर्ट हुआ था 7 बजे और 11:05 हम लोगों ने डिरेलमेंट कर दिया। वजह हम लोगों ने जे ग्रेड इंक्वायरी के लिए नियुक्त की है। प्राइम फेसाई इसमें व्हील डिफेक्ट लग रहा है, वो मेन जाँच का विषय है। जैसे जाँच पूरी होगी आपको।
ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। माँ सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी और भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या को जोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। धार्मिक महत्व वाले इन दोनों स्थानों के बीच 256 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का निर्माण किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल ये फैसला लिया। नरकटियागंज रक्सौल सीतामढ़ी दरभंगा और सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर खंड के 256 किलोमीटर लंबी रेल लाइन के दोहरीकरण पर 4,553 करोड़ रुपये खर्च होंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वार्षिक अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की 2 दिवसीय बैठक आज मथुरा के गौग्राम परखम में शुरू हुई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक डॉक्टर मोहन भागवत और सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबले भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। सर संघचालक मोहन भागवत के नेतृत्व में बैठक के पहले दिन आगामी कार्य योजनाओं पर मंथन हुआ, जिसके बाद 9 बिंदुओं का एजेंडा तय किया गया। इसे लागू करने की जिम्मेदारी 9 पदाधिकारियों को सौंपी गई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख नरेंद्र कुमार ने बताया कि इस बैठक में अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सदस्य हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में वर्ष 2025 की विजयादशमी को संघ विशेष रूप से मनाएगा।
संघ शताब्दी विस्तार की जो योजना संघ ने बनाई है उसकी समीक्षा संघ शताब्दी वर्ष में और अगले वर्ष 2025 की विजयादशमी में किस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करना और पूरे वर्ष भर भी समाज तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए कौन कौन से कार्यक्रम किए जाएंगे उस पर भी यहां पर चर्चा होगी।
वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के पास मौजूद अन्नपूर्णा मंदिर में धनतेरस से अन्नकूट महोत्सव तक भक्तों में सिक्कों का वितरण किया जाएगा। इस दौरान श्रद्धालु दरबार में 5 दिनों तक माता के स्वर्णमयी विग्रह मां अन्नपूर्णा और रजत महादेव के दर्शन कर सकेंगे। आज एक पत्रकार वार्ता में महंत शंकरपुरी ने इस बारे में जानकारी दी।
प्राचीन अन्नपूर्णा मंदिर है जहाँ पर साल में 5 दिन माता अन्नपूर्णा का दर्शन होता है। आम भक्तों के लिए 5 बजे से मंदिर के कपाट खोल दिए जाएंगे। पहले दिन माता जी का खजाना मिलेगा, उसमें लाभा मिलेगा और पैसा मिलेगा और अनेक प्रकार के रत्न या अनेक धातुओं के खजाने के जो सिक्के होते हैं वो पब्लिक में बांटे जाते हैं। इस बार 5 दिन मंदिर खोला जाएगा, 29 तारीख से लेकर 2 तारीख तक। 2 तारीख को माता अन्नपूर्णा का अन्नकूट है जिसमें 56 प्रकार का भोग लगाया जाएगा और लगभग 511 से 516 क्विंटल के बीच में प्रसाद बनाया जा रहा है।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पूरे ज्ञानवापी परिसर का सर्वे कराने की अपील को वाराणसी की जिला अदालत ने आज किया खारिज। फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे वादी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज महाराजगंज में 940 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। 9 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि आज हुई समाप्त। 30 अक्टूबर तक वापस लिए जा सकेंगे नाम। मेरठ और सहारनपुर में अलग अलग मालगाड़ियों के कई डिब्बे पटरी से उतरे। हादसे के कारण और कई ट्रेनों का रूट बदला। घटना की जांच शुरू। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वार्षिक बैठक आज मथुरा के परखम में हुई शुरू। सर संघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत और सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबुले बैठक में हुए शामिल। प्रादेशिक समाचार के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।